आर्यांश ने दीवा को घर जल्दी आने के लिए कहा था, लेकिन दीवा डॉक्टर निश्चय की बर्थडे पार्टी के डिनर में चली गई। दीवा ने प्लान किया था कि वो डिनर के बाद घर चली जाएगी, लेकिन डिनर के बाद गेम से शुरू हो गए। गेम हारने की शर्त पर ड्रिंक के शॉट लेने थे और इस चक्कर में दीवा ने काफ़ी पी ली थी। निश्चय उसे घर छोड़ने आया था और दीवा ने नशे में निश्चय को अपने घर का एड्रेस बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ आर्यांश गुस्से में दीवा के आने का इंतज़ार कर रहा था। निश्चय के जाने के बाद जब दीवा अपने घर के अंदर जाने लगी, तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वो आंखें बड़ी करके बोली, अरे नहीं, अब ये मेरा घर नहीं है, मुझे तो उसके घर जाना था। नशे में ही सही दीवा को याद आ गया था कि उसे आर्यांश के पास जाना था। उसने जल्दी से टैक्सी ली और लगभग एक घंटे बाद आर्यांश के घर पहुंच गई थी। दीवा को लगा कि देर हो जाने की वजह से आर्यांश सो गया होगा। वो घबराते हुए अंदर पहुंची। अंदर अंधेरा था। जैसे ही उसने लिविंग रूम के अंदर कदम रखा, वो रोशनी से जगमगा उठा। दीवा की नज़र सामने की तरफ गई, जहां आर्यांश एक किंग की तरह बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गहरे गुस्से के भाव थे। तो तुम्हें याद आ ही गया कि घर भी आना है, आर्यांश ने उसे देखते हुए सर्द आवाज में कहा। दीवा ने घबराते हुए कहा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था कि मुझे आने में देर हो जाएगी, तुमने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। आर्यांश की नज़रें दीवा पर टिकी हुई थीं। वो उसके लड़खड़ाते कदमों को देख रहा था। उसकी ये सर्द निगाहें दीवा को डराने के लिए काफ़ी थीं। उसका सारा नशा उतरने लगा था। अच्छा, तो मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया? एक बार अपना मैसेज बॉक्स चेक करो, फिर बताना कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था या नहीं, आर्यांश ने भौहें चढ़ाकर कहा। आर्यांश के कहने पर दीवा ने जल्दी से अपना मोबाइल बाहर निकाला। उसने डेटा बंद कर रखा था। उसने डेटा ऑन किया तो पता चला कि आर्यांश ने बहुत सारे मैसेज भेजे थे। वो खाने के लिए उसका इंतजार कर रहा था। दीवा के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वो वहीं खड़ी रही, न तो अंदर जाने की हिम्मत कर पाई और न ही वहां से हटने की। उसे बस इतना पता था कि उसने फिर से आर्यांश को नाराज कर दिया है। दीवा ने अपना सिर झुका लिया, जैसे कोई बच्चा अपनी गलती मान रहा हो। वो घबराकर अपनी उंगलियों को मरोड़ने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आर्यांश की तरफ नज़र उठाकर भी देखे। अब यहाँ पर खड़ी रहकर पूरी रात बिताने का इरादा है, या ये भी बताओगी कि तुम्हें आने में देर क्यों हुई, आर्यांश ने पूछा। मैंने तुम्हें बताया तो था, आज मेरे कलीग डॉक्टर का बर्थडे था, बस उसी के इंतजार में डिनर पार्टी में चली गई थी, दीवा ने धीरे से जवाब दिया। अच्छा, और वो डॉक्टर मेल था या फीमेल? कितने लोग गए थे पार्टी में, आर्यांश उसे सवाल जवाब करने लगा। उसका सवाल सुनकर दीवा एक पल के लिए हैरान रह गई। उसने सोचा नहीं था कि आर्यांश की थिंकिंग इतनी छोटी होगी। क्या फ़र्क पड़ता था कि वो डॉक्टर मेल था या फीमेल, या उसके साथ कितने लोग गए थे? वो एक ऐसी लड़की नहीं थी जो किसी के साथ भी मेकआउट करने के लिए निकल पड़े। दीवा ने गहरी सांस ली और जवाब में कहा, वो मेरे साथ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करता है। पूरी डिपार्टमेंट के लोग पार्टी में गए थे। अब तक आर्यांश बैठा हुआ था। अचानक वो खड़ा हुआ और गर्दन तेजी से हिलाकर बोला, फिर ऐसा करो, अपनी हॉस्पिटल की जॉब छोड़ दो। दीवा को झटका सा लगा। उसे आर्यांश पर गुस्सा आने लगा। वो उस पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, और वो क्यों? मैंने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया है कि तुम मुझे जॉब छोड़ने को बोल रहे हो। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो मेरा गुजारा कैसे होगा? अच्छा, तो तुम्हें पता नहीं है कि तुमने क्या गलती की है? मुझे ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है जो आधी रात को नशे में धुत होकर घर आएं, आर्यांश ने जवाब दिया। दीवा को अपनी गलती समझ आ गई थी। वो शांत आवाज में बोली, देखो, बात सिर्फ इतनी ही है तो आई प्रॉमिस मैं आगे से ड्रिंक नहीं करूंगी। तुम सीधे मुझे जॉब छोड़ने को बोल रहे हो, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, उसकी आवाज भारी होने लगी थी। गलत? यहाँ किसी के साथ गलत हुआ है तो वो मेरे साथ हुआ है। मैं तुम्हारे खाने के लिए वेट कर रहा था, मुझे भूख लगी थी, तुम्हारी वजह से मैंने अब तक खाना तक नहीं खाया है, आर्यांश ने गुस्से में कहा। अब तो दीवा को सच में उस पर दया आने लगी थी। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या तुमने अब तक खाना नहीं खाया है? तुमने बताया क्यों नहीं? शायद तभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है। दीवा आर्यांश के करीब बढ़ने लगी तो आर्यांश कुछ कदम पीछे हो गया था। दीवा के अंदर से शराब की स्मेल आ रही थी, जो आर्यांश को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आज दीवा ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। आर्यांश ने दीवा की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, तुम जानती हो, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे तब तुमने ड्रिंक कर रखी थी और तुम्हारी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिए थे। आर्यांश की बात सुनकर दीवा उसकी तरफ घूर कर देखने लगी, मानो उसने ही ये सब किया था। आर्यांश ने अपनी सफाई में कहा, मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने ही तुम्हें उस रात बचाया था। अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम एक बूढ़े आदमी के बिस्तर पर मिलती। आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हारे और उसके बीच क्या कुछ हो गया होता। तो क्या इसमें मेरी गलती है कि किसी ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था, दीवा ने गुस्से में पूछा। गलती तुम्हारी नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, अगर यही रहा तो कोई भी तुम्हारा फायदा उठा लेगा, आर्यांश ने उसे समझाते हुए कहा। दीवा ने ड्रिंक कर रखी थी, इस वजह से वो सोच समझ कर नहीं बोल रही थी। उसने जवाब में कहा, हाँ जानती हूँ, कोई भी फायदा उठा लेगा, जैसे तुम उठा रहे हो। तुम भी तो वही कर रहे हो। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा रहा हूँ, तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। बाकी आगे से ध्यान रखना, इतना नशा करके घर आई तो सच में तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी होगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, आर्यांश ने सख्ती से कहा। दीवा का भी आगे बहस करने का मूड नहीं था। वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। आर्यांश ने उसे रोकना चाहा, लेकिन दीवा गुस्से में किचन चली गई थी। उसने आर्यांश के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाए थे। पानी गर्म करते वक्त दीवा ने आर्यांश को बहुत कोसा। इस इंसान को इस दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। कितना अच्छा होता जो ये पैदा ही नहीं होता, दीवा ने गुस्से में बड़बड़ा कर कहा। अगर आर्यांश के साथ दीवा ने डील नहीं की होती तो वो उसे कभी नहीं झेलती। वो आर्यांश के आगे कभी हार नहीं मानती, अगर बात उसके पापा की नहीं होती। दीवा नूडल्स का बाउल लेकर बाहर आई और उसे आर्यांश के सामने रखते हुए बोली, ये लो खाओ। आर्यांश ने एक नजर दीवा की तरफ देखा। उसने एप्रन भी नहीं उतारा था। ऐसा तभी होता था जब किसी कपल के बीच शादी को टाइम हो जाता था। इसका सपना आर्यांश ने हमेशा देखा था, लेकिन वो लड़की दीवा नहीं, वो कोई और थी। पर अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उन कुछ पलों में दीवा ने आर्यांश के चेहरे पर कई भावों को बदलते हुए देखा। पहले वो गुस्सा था, तो फिर वो दीवा को प्यार से देख रहा था, और अब वही प्यार दुख में बदल गया था। आर्यांश बिना कुछ बोले नूडल्स खा रहा था, जबकि दीवा उसे देख रही थी। उसका खाना हो जाने के बाद दीवा ने पूछा, कैसा बना था? ठीक ठाक, आर्यांश ने जवाब में इतना ही कहा। दीवा को उससे कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी, वो वैसे भी खुलकर कुछ नहीं कहता था। आर्यांश ने उसे पूरा खाना खत्म किया, उसके लिए वो काफी था। दीवा ने आर्यांश को पानी दिया तो वो बोला, कल से तुम्हारी देखभाल करने और घर के बाकी कामों के लिए एक नैनी आ जाएगी। लेकिन मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मैं कोई बच्ची तो हूँ नहीं जिसके लिए नैनी की जरूरत पड़े। दीवा ने तुरंत मना कर दिया, मैं ऑस्ट्रेलिया बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, लगभग एक हफ्ता लगेगा।
दीवा ने कुछ सोचा और समझ गई कि वो नैनी को उसकी निगरानी के लिए रख रहा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, असल में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ। हालांकि आर्यांश के बिजनेस ट्रिप पर जाने की खबर उसके लिए बहुत अच्छी थी, वो अपनी खुशी रोक नहीं पा रही थी। उसने मन ही मन सोचा, चलो अच्छा है, थोड़े टाइम के लिए ही सही, पीछा तो छूटेगा। आर्यांश ने दीवा के चेहरे पर बदलते भाव देखे, फिर अचानक कुर्सी पर आराम से पीछे की ओर झुक गया और अपने बाएं हाथ को बढ़ाया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। इधर आओ, दीवा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसे समझ नहीं आया कि आर्यांश क्या करने वाला है। बैठो, आर्यांश ने अपनी गोद की तरफ इशारा करके कहा। दीवा कुछ समझ पाती उससे पहले आर्यांश ने झट से दीवा को अपनी गोद में खींच लिया और उसे अपने पैरों पर बैठा लिया। दीवा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर बार जब वो आर्यांश के करीब आती तो उसे अजीब सा एहसास होता। उनके बीच की दूरी बस जरा सी थी, न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था। एक चैप्टर रात को भी आएगा, चलिए पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो पोस्ट में मैंने QR दिया है, उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्कैन कर लेना।